नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 500 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव कर सकती है, सूत्रों ने ये जानकारी दी। केंद्र प्रस्तावित विधेयक के तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसी भी डिजिटल प्रणाली में उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या पहले से रखे गए आंकड़ों की निगरानी और उसे संग्रह करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिकृत कर सकता है। इस पहल का मकसद मालवेयर या वायरस के घुसपैठ या उसे फैलने से रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया विधेयक के मसौदे पर काम कर रहा है। ये मौजूदा आईटी अधिनियम का स्थान लेगा, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों में 22 साल से अधिक समय पहले लागू किया गया था। सूत्र के मुताबिक डिजिटल इंडिया विधेयक में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इकाइयों पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माने के प्रावधान हो सकता है। घरेलू बाजार बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले, लेकिन वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी कोषों की लगातार निकासी के बीच उन्होंने बढ़त खो दी। बीएसई सेंसेक्स 287.32 अंक चढ़कर 66,406.01 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 50.2 अंक बढ़कर 19,766.65 पर था। हालांकि बाद में दोनों ने शुरुआती बढ़त खो दी। बीएसई 64.71 अंक गिरकर 66,053.98 पर और निफ्टी 14.20 अंक फिसलकर 19,702.25 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, सन फार्मा और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर लाभ में रहे। वहीं टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में गिरावट आई। घरेलू बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच शुरुआती कारोबार में रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की बढ़त के साथ 83.21 पर पहुंच गया। विदेशी कारोबारियों ने बताया कि शुरुआती सत्र में भारतीय मुद्रा लगभग सपाट कारोबार कर रही थी। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच घरेलू शेयरों में मजबूती ने रुपये को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.22 पर खुला। इसके बाद 83.25 से 83.20 प्रति डॉलर के बीच सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 83.21 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 1 पैसे की बढ़त है। मंगलवार को रुपया 83.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसी बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 106.67 पर रहा। कैनरा बैंक ने अपने पहले दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी कर 7.54% प्रतिवर्ष की कूपन दर पर 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार 14,180 करोड़ रुपए से अधिक की बोलियों के साथ इसको निवेशकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 1,000 करोड़ रुपए के निर्गम मूल्य के साथ इसमें 4,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प शामिल है। केयर रेटिंग्स लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा बैंक के दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को AAA या स्थिर रेटिंग दी गई है। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा के साथ मिलकर एक नया लग्जरी ब्रांड AFEW राहुल मिश्रा पेश किया है। इस ब्रांड के तहत सुविधाजनक कपड़ों एवं आभूषणों का शुरुआती संग्रह बुधवार को पेरिस में आयोजित फैशन शो के दौरान पेश किया गया। इस दौरान वैश्विक खुदरा विक्रेता, फैशन जानकार एवं हस्तियाँ मौजूद थी। रिलायंस ब्रांड्स ने बयान में कहा कि आने वाले महीनों में इस ब्रांड के उत्पाद संबंधित वेबसाइट और राहुल मिश्रा के विशेष स्टोर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रिलायंस ब्रांड्स के प्रबंध निदेशक दर्शन मेहता ने कहा कि पेरिस फैशन वीक के दौरान इस ब्रांड को पहली बार पेश करने से इसे वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समय सीमा 1 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर तक थी। उत्तराधिकारी को नामित नहीं करने पर निवेशकों के खाते पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और वो अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे। ये कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने के लिए उठाया गया है। सेबी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक बाजार भागीदारों से मिले अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब ये प्रावधान 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर की थी। सेबी ने 15 जून 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 1 अगस्त 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा देना अनिवार्य कर दिया था। इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल का लंदन स्थित पुराना युद्ध कार्यालय अब एक लग्जरी होटल की शक्ल में फिर से खुल गया है। हिंदुजा समूह के स्वामित्व वाले इस होटल का उद्घाटन मंगलवार शाम को एक संगीत कार्यक्रम के साथ हुआ। मशहूर संगीतकार लॉर्ड एंड्रयू लॉयड वेबर एवं एंड्रिया बोसेली की शानदार प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की बहन राजकुमारी एन ने ओडब्ल्यूओ होटल का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। उसके साथ हिंदुजा समूह के सह चेयरमैन जीपी हिंदुजा भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी थोड़ी देर के लिए पहुंचे थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।